الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورۃ النمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 29 سے 37 تک. ترجمہ خلاصہ تفسیر وغیرہ پڑھ لیا تھا. معروف مسائل چل رہے ہیں جن میں ہم اس عنوان پر تھے پیج 578 کے اوپر کے خطوط میں بسم اللہ لکھنا، خط میں بسم اللہ لکھنا. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت لکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط سے نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مکاتیب سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے. ٹھیک ہے، تو انبیاء کی سنت، جیسے کہ خوشبو انبیاء کی سنت ہے، ختنہ انبیاء کی سنت ہے، اسی طریقے سے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بسم اللہ کو اپنے نام سے پہلے لکھیں یا بعد میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اس پر شاہد ہیں کہ بسم اللہ کو سب سے مقدم، اللہ کے نام کو سب سے پہلے، اس کے بعد کاتب کا نام، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے گا. اور قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے اور بسم اللہ بعد میں مذکور ہے، اس کے ظاہر سے جواز اس کا بھی معلوم ہوتا ہے. یعنی اپیرنٹلی دیکھا جائے اس کو، اس کے ظاہر سے کیا مراد ہوتا ہے، جو آبویس بات ہے، جو اپیرنٹ بات ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جواز، یعنی یہ پرمیسیبلٹی معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ اپنے نام کے بعد لکھی جائے. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، کیونکہ آیت کے اندر جو ہے وہ من سلیمانہ پہلے تھا اور اس کے بعد پھر وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بعد میں تھا آیت کے اندر نا، آیت نمبر 30 کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس آیت کو بغیر تفسیر کے، بغیر تعویل کے، اگر صرف اس کے آؤٹ ورڈ کے اوپر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ بعد میں اور سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے. لیکن مفسرین جو ہیں وہ گہرائی میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابن ابی حاتم نے یزید بن رومان سے نقل کیا ہے کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا تھا، من سلیمان ابن داؤدا الى بلقیس ابنتی ذی شرح وقومها. ٹھیک ہے، اللہ تعلو، یہاں سے پھر اللہ تعلو جو ہے وہ خط کا متن شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، پھر اس کے بعد من سلیمان تھا، پورا سلیمان بن داؤد. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مکتوب الیہ بلقیس ابنتی ذی شرح وقومها اور اس کی قوم. ٹھیک ہے، کیونکہ پوری کی پوری قوم بھی جو ہے وہ اس خط کا مخاطب تھی. بلقیس نے جب یہ خط اپنی قوم کو سنایا تو اس نے قوم کی آگاہی کے لیے سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن کیسے ماشاءاللہ گہرائی کے ساتھ اس چیز کو انہوں نے سمجھا اور ہمیں بتایا کہ وہ تو پڑھنے میں یہ آرڈر انہوں نے استعمال کیا نا بلقیس نے، لکھنے میں یہ آرڈر ضروری نہیں ہے، کیسا ہی تھا. قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ بلقیس کا قول ہے. قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں بسم اللہ مقدم تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام مقدم تھا. ٹھیک ہے، تو کوئی تصریح نہیں ہے کہ ایسے ہی یہ خط لکھا ہوا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا قول ہے نا، قالت سے یہ آیت شروع ہوئی تھی نا، یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتابا کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تو سارا کا سارا بلقیس کا قول ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لفافے کے اوپر لکھا ہو اور اندر بسم اللہ سے شروع ہو. بلقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، کتنی آسان سی بات ہے. اب اس سے شریعت کا ایک مسئلہ نکالا کہ خط نویسی کی اصل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے. لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہا نے یہ کلیہ قاعدہ لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے، اگر اس جگہ اس کاغذ کے بے ادبی سے محفوظ رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے، جیسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے یا ایسی زمین کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، تو ایسے خطوط اور ایسی چیز میں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔ آج کل جو عموماً ایک دوسرے کو خطوط لکھے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ادائے سنت کے لیے زبان سے بسم اللہ کہہ لے، تحریر میں نہ لکھے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہوں کو خطوط جو ہے نا، بادشاہ جو ہے پھر اس کو ڈسٹ بن میں ہی ڈال دیا کرتے تھے نا، خصوصاً جب دوسرے بادشاہوں کی طرف سے ان کے پاس خط آتا ہو، تو بادشاہ کا خط اس کا ایک مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انبیاء نے جو بادشاہوں کو خط لکھے تو اس میں ایسا احتمال نہیں تھا کہ گندگی کے یعنی کسی نالی میں پھینک دیں گے، کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فقہا نے پھر یہ جو ہے نا وہ اخذ کیا، فقہا کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو مآخذ شریعہ ہیں، سورسز آف شریعہ، تو وہاں سے جو ہے نا پھر مسئلے ڈیڈیوس ایکسٹریکٹ کریں، رائٹ، ڈیڈیوس کریں اس سے مسئلے کہ بھئی یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مسائل کہلاتے ہیں، یعنی مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے بارے میں کوئی سوال اٹھتا ہو، کوئی سوالیہ نشان اٹھتا ہو، مسئلہ، ٹھیک ہے، کوشچن، اوکے، تو مسئلہ کا لفظ جو ہے وہ سوال سے نکلا، مسئلہ کا مطلب اردو زبان میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ کانٹیکس میں استعمال کرتے ہیں کہ ایشو، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم، کوئی ڈیفیکلٹی، ٹھیک ہے نا، ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ایکچولی، کیونکہ جب کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، تو انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ سوال اس کے زبان پر بھی آتا ہے کہ بھائی وائی دس، وائی می، وائی ناٹ ہم، ہے نا، ہاؤ ٹو ریزالو دس، تو یہ سب سوال آتے ہیں نا جب کوئی پرابلم آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو مسئلہ کا لفظ جو ہے وہ اس کا تعلق ہے سوال کے ساتھ۔ تو فقہا کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ایسا کوئی ان کو ایشو نظر آتا ہے نا، تو اس کو پھر قرآن سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کوئی ان کے پاس آئے گا کہ بھائی وہ میں خط لکھنا چاہتا ہوں تو اس میں سنت کیا ہے، تو فقیہ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی اس کی کیا سنت ہے، تو جبھی وہ ڈرائیو کرتے رہتے ہیں، یہ والا کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے پاس اس کو لکھتے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپائل بھی کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ اچھا، ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا کسی کافر مشرق کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟ یہ خط حضرت سلمان علیہ السلام نے بلقیس کو اس وقت بھیجا ہے کہ جبکہ وہ مسلمان نہیں تھی، حالانکہ اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطوط ملوک عجم کو لکھے، عجم کے یعنی نان عرب ایریاز میں بھیجے تھے نا، نبی علیہ السلام میں بھی بھیجے تھے اپنے خطوط وہاں کے بادشاہوں کو، اور وہ لوگ مشرک تھے نا، جبھی تو ان کو یہ خط لکھے گئے تھے توحید کی دعوت کے لیے، تو ان میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہوئی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں ہے، قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آ گئی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں دوسری چیزیں جو کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ میجورٹی جو ہے نا وہ نان قرآن ہے، اور ایک آدھ جو ہے وہ اس کے اندر آیتیں آ گئی ہیں، یا قرآن کی اگر آپ ٹوٹل یعنی آیات کو جمع کریں تو وہ 50% سے کم ہے، تو اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اکثر کا، اکثر کیا ہے، نان قرآن، انگلش میں ہے، عربی، ایون عربی میں بھی وہ نان قرآن ہے نا، یا اردو میں ہے یا کسی اور لینگویج کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر قرآن مجید کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کرے آپ لوگوں کے ہاتھ میں باقاعدہ تفسیر کی کتاب بھی ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو سامنے کتاب ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو تفسیر کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اس میں قرآن مجید ہے، لیکن اکثر کیا ہے، اردو عبارت ہے، राइट या कुरान मजीद के अलावा जो बातें हैं वो इसके अंदर ज्यादा तादाद में है। तो इस वजह से तफसीर के ऊपर, तफसीर की किताब के ऊपर कुरान मजीद का हुक्म नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद की इबारत कम है इसके अंदर। तो वही फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई किताब या कागज जिसमें किसी मजमून के जिमन में कोई आयत आ गई हो वो उर्फ में कुरान नहीं कहलाता, इसलिए उसका हुक्म भी कुरान का हुक्म नहीं होगा। वो किसी काफिर के हाथ में भी दे सकते हैं और बेवजू के हाथ में भी दे सकते हैं। ठीक है, फतावा आलमगीरी, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने अपने जमाने के उलमा को इकट्ठा करके बाकायदा फतावा जो है ना वो कंपाइल करवाए थे, उनको फतावा आलमगीरी कहते हैं। तो उसके अंदर ये फतवा दर्ज है, वहीं से हजरत ने यहाँ पे नकल किया है। अच्छा, क्या लिखा, अगर लफ्ज से अल्लाह को खत में हो खत में, फॉर एग्जाम्पल सलाम में या किसी नेम में, तो क्या ऐसे खत को फेंक सकते हैं डस्टबिन में? नहीं, फेंकना डेफिनेटली नहीं चाहिए। हमने बड़ों को भी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी यही आदत है और बच्चों को भी यही सिखाया कि ऐसे जो भी चीज हो ना तो उसको काट करके अलग कर लें, ठीक है, लफ्ज अल्लाह को उसमें से अलग कर लें और या पूरी पूरी आयत है उसको काट लें, ठीक है। तो डस्टबिन में तो अदबन हरगिज नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन इसमें भी जो है ना वो हरज का मामला देखा जाएगा कि मिसाल के तौर पर अखबार है, ठीक है, अब अखबार के अंदर तो बेतहाशा इबारत होती है, राइट, और अगर कोई अरबी अरब अखबार हो या उर्दू अखबार हो तो अब उसके अंदर न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने अल्लाह का नाम बीच में लिखा हुआ होगा, मुसलमान मुल्क का कोई अखबार है, तो अब वो आप अखबार में तलाश करने अगर बैठ जाएं तो रोजाना के हिसाब से अखबार होता है और उसके अंदर आप यानी अच्छा खासा 2 घंटे आपने यही काम करना है, फिर उसके बाद मतलब जितना भी आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छी खासी एफर्ट लगेगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप अखबार का अगर आपके लिए मुमकिन है तो उसका कोई और ठिकाना बनाएं, ठीक है, कि जैसे कि मस्जिदों के बाहर जो है वो ड्रम्स होते हैं जहां पे पुरानी आयात वाले सफ़ात डाल दिए जाते हैं, तो ठीक है, अगर आपके लिए आसानी है तो वहां पर उन अखबारों को वहां पे डालें ताकि वो फिर नजासत का के मुकामात के ऊपर ना फेंके जाएं, बल्कि रिसाइकलिंग वगैरह के सिस्टम में किसी तरीके से चले जाएं, ठीक है। और अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, इस ऐसी जगह नहीं है अवेलेबल, तो फिर उसके अंदर अगर आप बैठ करके अल्लाह का नाम काटना शुरू करेंगे ना तो फिर ये हरज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी और ला हरज फी दीन, यानी दीन में जो है ना वो हरज के मुकाम के से जो है ना फिर वो किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो छोटे मोटे खत में तो अल्लाह का नाम निकाल लेना या कोई ऐसी आपके पास कोई कॉपी बुक वगैरह है तो उसमें से वो इतना मुश्किल नहीं होती, थोड़ा सा बस तवज्जो चाहिए होती है उसके लिए। कुछ लोग देखे जो अदबन अहमद और मोहम्मद का नाम इबारतों में से काट कर अलग कर लेते हैं, क्या ऐसा करना सही है? भाई गलत तो नहीं है, अगर कर सकते हैं तो करें, अहमद मोहम्मद और इसी तरह से अब्दुल्ला अब्दुलरहमान, राइट, अगर कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग हरज तो कर लें, ठीक है ना, मतलब इसको गलत कहना तो, लेकिन हरज पैदा ना करें, हरज पैदा अगर हो जाएगा ना फिर वो हरज पैदा करना जो है गलत हो जाएगा, यानी ओवर एक्सेस इस तरह का काम है ना, वही मतलब है कि भाई आप कितना ये कर सकते हैं। बहरहाल अब इसका मतलब ये भी नहीं है, कुछ लोग दूसरे एक्सट्रीम पर भी गए, ठीक है, कि मोहम्मद जो है ना वो नाम ही नहीं रखेंगे, है ना, बच्चे का बच्चा पैदा हो रहा है, माँ का दिल चाह रहा है मोहम्मद नाम रखें और सास अम्मा ने मना कर दिया, नहीं नहीं मोहम्मद नाम नहीं रखना, बेअदबी होती है, राइट, नहीं भाई मोहम्मद नाम बेअदबी, आप क्यों बेअदबी करते हैं मोहम्मद नाम के साथ, है ना, अच्छा अदब नहीं सीखेंगे, अदब नहीं सीखेंगे, जो सीखने की चीज है नाम रखना छोड़ देंगे, जो सबसे अच्छे नाम है वो रखना छोड़ देंगे, अदब नहीं सीखना, ठीक है ना, तो ये कौन सी वाली अकलमंदी है कि अदब तो मैंने सीखना नहीं कभी, राइट, बेअदबी ही सारी जिंदगी में रहना है और बेअदबी ही की हालत में दुनिया से रुख्सत हो जाना है, भाई अल्लाह ताला एक मौका दे रहे हैं कि नाम अच्छा रखो तो शायद, यानी शायद तो क्या मतलब इस बहाने अदब भी सीख लोगे, ठीक है। अच्छा ये भी कि जी मोहम्मद अपने बच्चे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि बाथरूम में जो है ना बच्चों को पुकारेंगे तो बाथरूम में मोहम्मद का नाम पुकारना जो है वो बेअदबी हो जाएगी, तो इस वजह से नहीं रखते। हमारे हजरत से भी अक्सर लोगों ने ये सवाल किया कि मोहम्मद का नाम बच्चे का रखें, बाथरूम में बच्चों को पुकारेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है, तो हर चीज की लिमिट्स होती है ना। अच्छा, खत मुख्तसर जामे बलीग और मुअस्सर अंदाज में लिखना चाहिए, حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس والا نامے کو دیکھیں تو چند سطروں میں تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دیے اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے. ٹھیک ہے, یعنی اپنا جو مقصد مطمئن نظر تھا وہ بھی بیان کر دیا اور بہت زیادہ الفاظ بھی استعمال نہیں کیے. کافر کے مقابلے میں اپنی شاہانہ شوکت کا اظہار بھی ہے نا, یعنی ایک شان ہے اس خط کے اندر, ہے نا, کہ بس جس طرح ہم اردو میں کہیں نا, اسی طرح بس آ جاؤ, ٹھیک ہے, آگے پیچھے نہ کرنا زیادہ. اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی, اور ترفع و تکبر کی مذمت بھی. ٹھیک ہے, حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت, ترفع اور تکبر کی مذمت بھی, کہ بھائی تکبر نہ کروں میرے سامنے, میں اللہ کا نبی ہوں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے, تو یو بیٹر ریسپیکٹڈ. در حقیقت یہ خط بھی اعجاز قرآنی کا ایک نمونہ ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت وہی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں, ٹھیک ہے, اپنا مطمئن نظر بھی بیان ہو جائے اور بلا ضرورت جو ہے وہ لمبائی بھی نہ ہو. تو یہ جو لکھنا ہے نا, لکھنا, اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے, فون آ گیا, فون کمیونیکیشن تو پچھلے 100 سال سے دنیا کے اندر رائج ہے, رائٹ, اور یہ سستی سے سستی ترین ہوتی چلی گئی, حتیٰ کہ اب جو ہے وہ اسمارٹ فونز آ گئے, اور جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ وائس میسیجنگ کا سسٹم آ گیا, اور یعنی بہت آسان ہو گیا ہے وائس پہ بات کرنا, ٹھیک ہے, لیکن جو لکھنے کی افادیت ہے نا وہ آج بھی کم نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بولنے میں جو ہے نا وہ ہم اکثر, یعنی ہر ایک کے پاس ایک تو فصاحت بلاغت ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے کوئی اتنا یعنی فصیح بلیغ اردو دان یا انگریزی دان یا عربی دان تو کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے, تو بولنے میں انسان کے لیے اپنے الفاظ کو کنٹرول کرنا, اپنے الفاظ کو جو ہے وہ صحیح جامع پہنانا, ٹھیک ہے, یعنی اپنے اپنے بلکہ خیالات کو صحیح جامع الفاظ پہنانا, یہ بولنے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور زبان ویسے بھی ایک تر چیز ہے, تر, رائٹ, سلپری, تو زبان سے تو چیزیں بڑی تیزی سے سلپ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو لکھنے کے اندر جو ہے نا وہ بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ لکھنے میں انسان کو ذرا ٹائم لگانا پڑتا ہے. ہاں, ایک اس کے اندر نقصان بے شک ہوتا ہے, بظاہر نقصان ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انسان بڑے بڑے غلطیوں سے لکھنے میں بچ سکتا ہے, کیونکہ وقت لگا کر کے وہ ذرا سوچ سمجھ کر کے بات لکھتا ہے, ٹھیک ہے, تو کم الفاظ کے اندر بڑی اچھی بات نکل آتی ہے, بلکہ ہم نے تو بے شمار موقعوں پہ ایسا تجربہ کیا ہے کہ لکھنے سے پہلے کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں, لیکن گویا کہ ہوتا نا جیسے شاعر صاحب, شاعر نہیں ہوتے, یہ قلم اٹھاتے ہیں تو آمد ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو ایسا بڑی بہت دفعوں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ بس لکھنے کی ابتدا کری اور آمد ہونی شروع ہو گئی, جواب کی آمد ہونی شروع ہو گئی, وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ اس دوران جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد بھی شامل نظر آتی ہے, اور انسان جو ہے وہ بہت ساری غلطیوں سے بھی بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ لکھنے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ بس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, ایسا بھی نہیں ہے, لیکن غلطی کا احتمال کم ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ بس ہڑا بڑا ہڑبڑی کے اندر بس جلدی 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 ہر چیز نپٹانا ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ سرعۃ من الشیطان, نبی علیہ السلام فرمایا کہ سرعۃ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے, اسپیڈ از فرام دا سیٹن, تو وہ جو بہت جو لوگوں کو کچھ زیادہ ہی جلد بازی کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو اب ان سے جو ہے نا لکھا نہیں جاتا, وہ بس چاہتے ہیں بس 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 وہ فون پہ بات ہو جائے, بس جلدی سے جو ہے نا وہ وائس کے اوپر بات ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر غلطیاں بھی کر جاتے ہیں, خصوصاً اپنے بڑوں کے ساتھ تو غلطی کر جاتے ہیں, تو بھائی لکھنے کی ذرا عادت رکھیں, اس کو بالکل ہی نا ٹیکنالوجی کے بہانے لکھنے کو بالکل ہی اپنی زندگی سے رخصت نہ کر دیں, ٹھیک ہے. Written communication also better for رابطہ شیخ, yes definitely, ٹھیک ہے نا, رابطہ شیخ کے اندر تو انسان کو ویسے بھی سوچ سمجھ کر کے بات کرنی چاہیے کہ میں exactly کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور مجھے میرا مقصود کیا ہے, ٹھیک ہے, تو زبان سے بولنے میں پھر وہ ٹھیک ہے, آپ آمنے سامنے ہوتا ہے نا, دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں कि जो आमने सामने जब इंसान बैठा होता है ना, ठीक है, तो उस वक्त बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना वो बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है, इवन अगर औरत भी है और औरत मर्द से बात कर रही है, लेकिन वो पर्दे में भी है ना, ठीक है, तो पर्दे में भी रहने की वजह से एक एक फिजिकल जो प्रोक्सिमिटी होती है ना, जिसको कहते हैं, राइट, तो उससे जो है ना वो चीजें बहुत कंट्रोल में आ जाती हैं और बहुत बेहतरी आ जाती है। ठीक है, तो और मर्दों के साथ तो पर्दा भी नहीं होता मर्दों का, राइट, वो तो आमने सामने वैसे भी बॉडी लैंग्वेज जो है नजर आ रही होती है। लेकिन जब आप फोन पर होते हैं ना, आप जो है वो यानी आपके बीच में बेसिकली डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो फिजिकल प्रोक्सिमिटी इज मिसिंग देयर। ठीक है, तो अब जो है ना डिस्ट्रैक्शन के और भी फिर चीजें होती हैं, बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली वॉचिंग सीइंग द अदर पर्सन, तो डिस्ट्रैक्टिव चीजें जो है वो आपके चारों तरफ मौजूद हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं लेकिन साथ साथ डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, और उस तरीके से आप फोकस नहीं कर पा रहे जैसे कि यानी जिस जो डिजायर्ड है। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है ना, फिर उसके अंदर गलतियों के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस मामला है ना, तो उसमें रिटर्न को हमारा मेरा पर्सनल तो यही है कि भाई तरजीह देना चाहिए। ठीक है, बाकी शायद आपको इसमें कुछ और भी दलाइल हो उसके खिलाफ। ठीक है, तो अब सामने बैठ करके तो नहीं है ना कि भाई खत में लिख करके दे रहे हैं, हजरत के सामने बैठे हुए हैं और खत लिख करके हजरत के हाथ में पकड़ा रहे हैं, ठीक है ना, अब जाहिर है वो एक दूसरी एक्सट्रीम हो जाएगी। तो सामने बैठे हुए तो बॉडी लैंग्वेज का फायदा उठाएं, प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाएं, लेकिन दूर बैठे हुए तो रिटन कम्युनिकेशन का फायदा उठाएं। अच्छा, अगला उनवान है कि अहम उमूर में मशवरा करना सुन्नत है, इसमें दूसरों की राय से फायदा भी हासिल होता है और लोगों की दिलजोई भी होती है। तो ये जो उनवान बांधा तो इस आयत के तहत बांधा, जिसमें मलका सबा जो हैं वो अपने सरदारों से मशवरा कर रही हैं। कालत शी सेड, उन्होंने कहा, या अय्युहल मलाऊ, ए मेरे सरदारों, अफ्तूनी फी अमरी, मुझे मेरे मामले में मशवरा दो। ठीक है, मा कुन तो कातिअतन अमरन हत्ता तशदून, मैं तुम्हारे मौजूदगी और तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है ना कोई कतई फैसला अपने मामले में नहीं करती। ठीक है, मशवरे के साथ चलती हूँ। सही, हालांकि कितनी बड़ी यानी मुमलिकत की फरमा रवा है, और हैं भी आधी जिन्नियां, ये भी नहीं कि खाली इंसान है। ठीक है, आधी तो जिन है ना, अम्मा जो है वो जिन थी और अब्बा जो है वो कितने बड़े बादशाह थे कि उन्होंने तो इंसानों से शादी करने से इनकार कर दिया था, जब तो जिन्नी से शादी हो गई उनकी, तो ऐसे कपल की बेटी थी, तो कोई मामूली चीज तो नहीं थी ना, लेकिन मशवरा कर रही है, राइट, दुनियावी एतबार से देखो तो कितने बड़े मुकाम पर है लेकिन मशवरा कर रही है। और नबी अलैहिस्सलाम दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार दोनों लिहाज से सबसे अफजल तरीन मखलूक है ना, अल्लाह ताला की अफजल तरीन मखलूक है, लेकिन मशवरा कर रहे हैं। ठीक है, तो मशवरा कितनी बड़ी चीज है, तो हम तो किसी खाते में नहीं आते, तो हम अगर मशवरा ना करें और समझें कि नहीं मेरी अकल तो बस है ना बहुत है, ठीक है, तो वो तो फिर बस बेवकूफी की निशानी होती है और कुछ नहीं। तो अफ्तूनी फतवा से मुश्तक है, ठीक है, ये इसका जो जो रूट वर्ड है वो फतवा हुआ उससे जिससे डिराइव्ड है, जिसके मानी है किसी खास मसले का जवाब देना। ठीक है, फतवा देना, यहां मशवरा देना और अपनी राय का इजहार करना मुराद है। यानी यहाँ पे अफतूनी का मतलब ये नहीं है मुफ्ती साहब से जाकर के कोई फतवा दे रही थी, बल्कि मशवरा मांग रही थी, राय मांग रही थी। ठीक है, मुफ्ती साहब से जो है ना वो जाकर के राय नहीं मांगी जाती। ठीक है, उसी तरह जिसने बाकायदा किसी शेख के साथ बैत करी हुई हो ना, अब वो शेख से जो है ना वो यानी राय मांगे तो वो एक सोर्ट ऑफ, ठीक है भाई राय भी मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि राय मांगना कोई हराम हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप तो हिदायत ले रहे हैं ना, आप तो गाइडेंस ले रहे हैं, तो गाइडेंस और राय लेना जो है ना थोड़ा सा यानी इसमें डिफरेंस है। ठीक है, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी बस अब आप अपने शेयर से जो है वो राय ले ही नहीं सकते और राय लेना बेअदबी हो जाएगी और राय लेना जो है वो आपके लिए जो है वो यानी खराबी का सबब बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शेख से राय ले सकते हैं, लेकिन हमेशा राय लेना, राइट, ये भी ठीक नहीं है कि भाई अब आप यानी हजरत आप अपनी राय दे दें, अब ना मशवरा दे दें। ठीक है भाई, ये कोई आपके कोई मुशीर कोई थोड़ी बैठे हुए हैं, आपने कोई आपको यानी बेसिकली कुछ लोग होते हैं ना वो सुपुर्दगी का तो कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आता, तो वो जो है ना, फिर वो मशायख को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जिस तरह दफ्तर के अंदर अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, घर के अंदर जो है वो घर के अफराद को मैनेज कर रहे होते हैं ना, घर के बड़े हैं भाई, घर के अफराद को मैनेज करना है। तो कुछ माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं सालिकीन, सालिकीन तरीकत, राइट, जो कि शेख को भी मैनेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो शैतान ऐसे ऐसे काम भी करवा लेते हैं ना इंसान से। तो भाई ये मकसद ये नहीं है ना, अब आप फिर किसी जो मैनेज ही करना था तो आप फिर किसी मौलवी साहब को किराए के ऊपर रख लेना, उजबिल्ला है, उनको भी खैर किराए पे नहीं रखना चाहिए, उनका भी एक मकाम अदब होता है, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने हायर किया हुआ है शेख साहब को, ठीक है। इस किस्म की गलतियां जो है ना, ये फिर जिंदगी जाया करवा देती है इंसान से। तो मशवरा यहाँ पे, अच्छा उसी तरह बात हो रही थी कि जी मुफ्ती साहब के पास जाकर के आप राय ले रहे हैं, तो भाई ये तो मुफ्ती साहब का ये काम तो नहीं है ना कि बैठ के आपको मशवरे देते रहे, ठीक है ना। वो उनके पास तो लोग फतवा पूछने के लिए आते हैं, वो कुरान और हदीस की रोशनी में और दीगर फतावा की रोशनी में और अपने तमाम उलूम की रोशनी में आपको जो फतवा देते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहू की एक तहरीर गालबन कहीं पढ़ी थी या कोई बयान सुना था कि मुफ्ती जो फतवा देते हैं ना, ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है कि जिसके ऊपर गोया के अल्लाह ताला का सिग्नेचर होता है, अल्लाह ताला की तौकी होती है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो मुफ्ती की तरफ से फतवा आ रहा होता है, ठीक है। जैसे वो दारुल इफ्ता से आते हैं ना, तो नीचे जो है वो मुफ्ती साहब की एक स्टैंप होती है, दूसरे मुफ्ती की स्टैंप होती है, तीसरे मुफ्ती की स्टैंप होती है, फिर एक बड़े मुफ्ती की अल जवाब सही की स्टैंप होती है, ठीक है। तो वहां पर एक अल्लाह ताला की स्टैंप होती है, जो कि जाहिर है अल्लाह की स्टैंप हम अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, ठीक है ना। तो भाई वो क्या बता रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या दे रहे हैं, यही दे रहे हैं ना, अल्लाह का दीन इस मामले में ये बताता है, यही तो फतवा होता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने मुफ्ती को दिया है और हम मुफ्ती साहब को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इधर से भी फतवा लिया, उधर से भी फतवा लिया, इधर से भी फतवा लिया, और जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ना, मैं उस फतवे पे अमल करूंगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं दीन, ये बेसिकली आप मुफ्ती साहब के साथ नहीं खेल रहे हैं, राइट, आप दीन के साथ खेल रहे हैं, और बेसिकली दीन के साथ भी आप खाली खेलने की गलत फहमी में ही मुब्तला हैं, असल में आप अपनी आखिरत के साथ खेल रहे हैं, राइट, असल में जो बॉटम लाइन है ना, अपनी आखिरत के साथ खेल रहे हैं और किसी के साथ नहीं खेल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये है ही नहीं फतवा का, यहाँ पर तो मतलब ही जो है वो मशवरा देना और अपनी राय का इजहार करना मुराद। मलका बिल्कीस को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पहुंचा तो उसने अपने अरकान हुकूमत को जमा करके इस वाक़े का इजहार किया और उनसे मशवरा तलब किया कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। उसने उनकी राय दरियाफ्त करने से पहले उनकी दिलजोई और हिम्मत अफजाई के लिए ये भी कहा कि मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती। इसी का नतीजा था कि फौज और वुजरा ने इसके जवाब में अपनी मुस्तादी के साथ तामील हुक्म के लिए हर किस्म की कुर्बानी पेश कर दी, ठीक है। ये जो ऊपर वालों का ये एटीट्यूड जब होता है ना, इन्वॉल्विंग, राइट, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपनी टीम को जो है ना वो इन्वॉल्व रखते हैं, सिर्फ ऊपर से जो है ना वो एक हाकिमाना हुक्म नाजिल कर देना, सिर्फ ये वाला एटीट्यूड नहीं रखते। हाँ, कभी जरूरत पड़ती है तो जाहिर है आर्बिट्रेशन तो ऊपर वाले को ही करनी होती है, ठीक है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है ना वो अपनी सल्तनत को चला रहे होते हैं, तो फिर नीचे से भी रिसिप्रोकेट होता है ये, ठीक है ना। जो अकलमंद नीचे वाले होते हैं, जाहिर है हर बंदा तो नीचे वाला भी अकलमंद नहीं होता, समझदार नहीं होता, लेकिन जो अकलमंद होते हैं ना, तो वो नीचे से इसको रिसिप्रोकेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये एक ऐसी बॉन्डिंग रिलेशनशिप बन जाती है कि जो कि एक कामयाब एक सेटअप को चलाने वाली होती है, ठीक है। तो इनका ऐसा मामला था तो नीचे वाले भी फिर जान देने के लिए तैयार हो गए। नहनु उलू कुवतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी, ठीक है, कि हम बड़े ताकत वाले हैं और हम भी जबरदस्त लड़ाई करना जानते हैं, और आपका जो मामला है यानी आपके हाथ में, व्हाट एवर यू डिसाइड, ठीक है। हजरत कतादा ने फरमाया कि हमसे ये बयान किया गया है कि बिल्कीस की मजलिस शूरा के अरकान 313 थे। अजीब, 313 का नंबर यहाँ पर भी है, असहाबे बदर का 313 का नंबर, और जो है वो किताबों में रवायात से पता चलता है कि जो इमाम मेहदी आएंगे तो उनके ऊपर भी जो पहली बैत होगी ना हरम हरम मक्का के अंदर, वो भी 313 अफराद होंगे बैत करने वाले, और यहाँ पर भी 313 अफराद थे। और वो और एक और क्या हमने एक और जगह पढ़ा था ना अभी, जो असहाबे बदर, किसी को याद है? चले आपसे भी कुछ पूछना चाहिए, मैं भी बोले चले जा रहे हैं। एक और मुकाम पे 313 थे, वो किसी को याद है? जिसको सुन के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत खुश हुए थे जब काउंटिंग हुई थी ना बदर के मौके पर, तो आप सल्लम को पता चला कि 313 लोग हैं, तो आप सल्लम ने खुशी का इजहार किया था क्योंकि माजी में 313 अफराद एक और लश्कर के अंदर भी थे। जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस लश्कर में थे, यानी तालूत का लश्कर, जज़ाकुमुल्लाह, ठीक है, तो उसमें भी 313 अफराद थे जिन्होंने जालूत को फिर शिकस्त दी थी। अच्छा, तो हजरत खदा ये, हाँ, 313 थे और इनमें से हर एक आदमी 10,000 आदमियों का अमीर और नुमाइंदा था, ठीक है। तो 313 में अजीब अल्लाह ताला ने रखी है कि यहाँ पर 313 में हर बंदा जो है वो उसके पीछे 10,000 थे। उसी तरह हमारे मशायख फरमाते हैं कि इमाम मेहदी से जो 313 बैत करेंगे ना, वो उनमें हर बंदा जो है ना वो पीछे उसके बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसके अपने इलाके में रहने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर ही विल बी रिप्रेजेंटिंग दोज पीपल, ठीक है। इससे मालूम हुआ कि हम के अहम उमूर में मशवरा लेने का दस्तूर पुराना है। इस्लाम ने मशवरे को खास अहमियत दी और अमाल हुकूमत, यानी जो हुकूमत के जो 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 वर्कर्स होते हैं, जो मेन यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको मशवरे का पाबंद किया। यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वही इलाही के मूरत थे, आप सल्लम के ऊपर वारिद होती थी ना, अल्लाह की तरफ से वही वारिद होती थी और आसमानी हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलती थी, इसकी वजह से आपको किसी राय मशवरे की दर हकीकत जरूरत नहीं थी, मगर उम्मत के लिए सुन्नत कायम करने के वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया, वशाविरहुम फिल अम्र, ठीक है, के मामलात में इन लोगों से यानी अपने सहाबा से तुम मशवरा कर लिया करो। इसमें सहाबा कराम की दिलजोई और इज्जत अफजाई भी है और आइंदा आने वाले उमाल हुकूमत को इसकी ताकीद भी कि मशवरे से काम किया करें, ठीक है। गोया कि ये पूरा का पूरा जो जो उनवान था दो पैराग्राफ पर मुश्तमिल, ये इस्लामी सियासत के ऊपर, ठीक है ना, एक बेहतरीन डिस्कशन थी किस रियासत का जो निज़ाम है वो चलाने के लिए मशवरा जो है ना वो उसका एक कॉर्नर स्टोन है रियासत का, ठीक है। टाइम थोड़ा सा है तो और पढ़ लेते हैं, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। मकतूब सुलेमानी के जवाब में मलका बिल्कीस का रद्द अमल। अरबाब हुकूमत को मशवरे में शरीक करके उनका तआवुन हासिल कर लेने के बाद मलका बिल्कीस ने खुद ही एक राय कायम, जिसका हासिल ये था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले और तहकीक करे कि वो वाकई अल्लाह के रसूल और नबी हैं और जो कुछ हुक्म दे रहे हैं वो अल्लाह के अहकाम की तामील है या वो एक मुल्क गिरी के ख्वाहिशमंद बादशाह हैं। यानी बस ही वॉन्ट्स टू एड टेरिटोरी, राइट, अपने मुल्क में जो है ना वो टेरिटोरी एड करना चाहते हैं और उसके लिए जो है ना वो इस किस्म का उन्होंने एक खत लिख दिया है, ठीक है। तो लफाजी बेशक बहुत अच्छे अल्फाज हैं, बड़ी फसाहत बलागत नजर आ रही है अल्फाज के अंदर खत के, लेकिन लफाजी तो फिर भी किसी और के लिए मुमकिन है, ठीक है ना, कोई दूसरा इंसान भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके बात कर सकता है, जैसे कि आजकल यूट्यूब के ऊपर बड़े एक से एक, राइट, अच्छे अच्छे अल्फाज और अच्छे अच्छे यानी बातें और मौजू हदीसें, आजकल एक साहब के बारे में बड़ा शोर मचा हुआ है ना, उन्होंने घड़ी हुई हदीसें उठा करके बयान करनी शुरू कर दी हैं। जब मुल्क के नौजवान जो है ना पाइट पाइपर समझते हैं, पाइट पाइपर क्या होता है, वो एक पीक फ्रींस पाइट पाइपर का ऐड आता था, पीक फ्रींस का जो बिस्किट होता था ना, अभी भी होता है पीक फ्रींस वालों का, तो वो एक पाइट पाइपर का इश्तहार आता था, उससे हमें पता चला पाइट पाइपर क्या होता है। तो उसके पास जो है ना वो एक बंदा होता है जिसको के वो पाइट पाइपर बजाना आता है, यानी पाइप बजाना आता है, ठीक है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई नाम होता है, तो वो बड़े ऐसे जबरदस्त तरीके ऐसे बेहतरीन सुर के साथ वो उसको बजाते हैं ना, बैक पाइप पता नहीं उसको, मैंने कभी सुना नहीं आखिर, तो खैर वो जो बजाता था ना तो पूरे मोहल्ले के बच्चे जो है ना वो इकट्ठा हो जाते थे और उसको सुनना शुरू हो जाते थे और वो जिधर चलता था ना, वो पूरे मोहल्ले के बच्चे जो है ना उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते थे। अब मोहल्ले के जो बड़े थे ना, जो बुजुर्ग थे, उनको फिक्र हुई कि भाई ये तो बड़ी अजीब किस्म की चीज है, बड़ों को के ऊपर तो इसका असर नहीं होता, लेकिन बच्चे जो है ना वो इसकी म्यूजिक सुन करके इसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। फ्लूट, फ्लूट तो खाली बांसुरी को कहते हैं, वो बांसुरी तो नहीं मिला जाता, खैर जो भी है। तो वो पाइट पाइपर साहब ने इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को ना गर्विदा बना लिया। जब गर्विदा बना लिया ना, तो एक दिन जो है ना वो पाइट पाइपर साहब आए मोहल्ले में और उन्होंने अपना पाइप बजाना शुरू किया, सारे बच्चे उनके पीछे लगे। और वो साहब चलते चलते, अच्छा बड़े मना करते रहे, किसी बच्चे ने कान नहीं धरा, ठीक है ना। अब वो बच्चे पीछे चलते रहे, वो चलते चलते जो है ना वो जंगलों के अंदर दाखिल हुआ और अंदर जा करके वो अब सारे बच्चों के साथ गायब हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आजकल YouTube के ऊपर हर थोड़ी देर के बाद एक पाइट पाइपर साहब आ जाते हैं और उनके पीछे जो है वो बच्चे लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आजकल एक नए पाइट पाइपर साहब साहिल अदीन साहब के नाम से, आप में से पता नहीं कोई उनको अल्लाह ना करे सुनता हो, लेकिन बहुत सारे लोग मुतासर हो चुके हैं उनसे, ठीक है ना। बल्कि असल में पहले से मुतासर थे वो, तो पाइट पाइपर्स तो आते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू करी हैं कि बस अल्लाह रहम करे, ठीक है। तो भाई यूट्यूब से दीन लेने का फिर यही अंजाम होता है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन, ये लफाजी जो है ना, लफाजी करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास ये स्किल्स होती हैं, ओरेटोरी स्किल्स होती हैं, नरेशन की स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो देखें, मलका बिल्किस के पास नबी का खत आ रहा है, लेकिन वो पहले चेक कर रही है, ठीक है, कि ये क्या वाकई अल्लाह के नबी हैं या बस उन्होंने एक दिखा दिया अपने खत के अंदर बस, ठीक है। तो इस इम्तिहान से उसका मकसद ये था कि अगर वाकई वो नबी और रसूल हैं तो इनके हुक्म का इत्तेबा किया जाए और मुखालफत की कोई सूरत इख्तियार ना की जाए, और अगर बादशाह हैं और मुल्क गिरी के हवस में हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं तो फिर गौर किया जाएगा कि उनका मुकाबला किस तरह किया जाए, ठीक है। इस इम्तिहान का तरीका उसने तजवीज किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कुछ हदीये तोहफे भेजे, अगर वो हदीये तोहफे लेकर राजी हो गए तो अलामत उसकी ये होगी कि वो एक बादशाह ही है, और अगर वो वाकई में नबी और रसूल हैं तो वो इस्लाम और ईमान के बगैर किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। इस्लाम और ईमान के बगैर किसी चीज पर राजी नहीं होंगे, ये मजमून इब्ने जरीर ने मुतअद्दद असानीद के साथ, यानी बहुत सारी सनदों के साथ इस मजमून को हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुजाहिद इब्ने जुरैज इब्ने वहब रहिमहुमुल्लाहु अलैहिम से नकल किया है। इसी का बयान इस आयत में है, ठीक है। तो रसूल की ये शान होती है कि वो ईमान से कम के ऊपर राजी नहीं होता। उसी तरह जो रसूल के सच्चे पैरोकार होते हैं ना, वो भी गैरत ईमानी में डूबे हुए होते हैं, वो भी जो है ना ये यानी ठीक है मसलहतन जो है वो किसी से मुआहदा कर लिए, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए, यहूदियों से मुआहदे किए, मुशरिकीन से मुआहदे किए, फलाने कबीले से मुआहदे किए, लेकिन वो मुआहदे करने का मतलब ये नहीं होता कि अब आप जो है वो उनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएं और उनके साथ जो है वो बाहों में बाहें डाल करके जो है वो चलना शुरू हो जाएं। ये कोई थोड़ी मतलब होता है मुआहदे करने का, वो तो पॉलिटिकल मुआहदे होते हैं, वो तो आपको कोई 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 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कुछ काम करने के लिए आपको इस किस्म के एग्रीमेंट्स नॉन मुस्लिम्स के साथ, बदअकीदा लोगों के साथ भी करने होते हैं, ठीक है। लेकिन दिल की रजा, खुशी, मोहब्बत, ये ईमान के बगैर जायज ही नहीं है, और रसूल के लिए तो मुमकिन ही नहीं है ये चीज। यानी उसी तरह रसूल के जो सच्चे पैरोकार होते हैं वो राजी नहीं होते, ठीक है। तो ये भी एक हमारे लिए टेक होम पॉइंट है। अच्छा, किसी ने आप एक मैसेज लिखा है, उसको पढ़ के भी क्लास खत्म करते हैं कि एक जानब फिरौन और उसके मुशीर और दूसरी तरफ मलका सबा और उसके अरकान हुकूमत, दोनों के अंजाम में इतना फर्क हो गया, सिर्फ एटीट्यूड का फर्क था इनमें। हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, एक कम से कम पाकिस्तान की कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक जुमला बड़ा मशहूर है, इट्स द एटीट्यूड दैट काउंट्स, ठीक है ना। है तो अंग्रेजी का फिक्रा, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इसको कहते हैं इट्स द एटीट्यूड दैट काउंट्स, ठीक है ना। तो सारा का सारा खेल ही एटीट्यूड का है ना भाई। आपने बिल्कुल सही बात नोट करी कि एटीट्यूड का फर्क था। कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर बिग कॉजेस, नहीं, कॉम्प्रोमाइजिंग में ईमान को कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। कॉम्प्रोमाइजेज में जो है ना, जैसे सुलह हुदैबिया के अंदर नबी अलैहि सलाम ने एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। तो उस किस्म के कॉम्प्रोमाइज हमें सुन्नत से मिलते हैं, लेकिन दीन ईमान का कॉम्प्रोमाइज, फराइज को कॉम्प्रोमाइज कर देना, राइट, उसूलों को कॉम्प्रोमाइज कर देना, ये जायज नहीं होता, ठीक है, चाहे वो कितनी बिग कॉस्ट क्यों नहीं हो। ठीक है, चलें यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।